نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن لیں گے ہمارا آج کا سیشن علم البیان کی کنٹینویشن ہے اور اس میں ہم پیج نمبر 124 پہ دیکھیں گے باب نمبر 16 اور حدیث نمبر 75 یعنی 75 کو باب کا نام ہے من اجاب الفتیا بی اشارت الراسی والید من جس نے اجابہ جواب دیا الفتیا سوال کا بی اشارت الراسی سر کے اشارے سے والید یا ہاتھ کے اشارے سے یعنی بعض دفعہ استاد یا جس سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے وہ منہ سے بولنے کی بجائے ہاتھ کے اشارے سے کہہ دے کر لو نہ کرو تو اس کی بھی دلیل ہمیں ملتی ہے حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبض العلم علم اٹھا لیا جائے گا یہ جو لفظ ہے یقبض قبض کرنے سے اسی سے یہ لفظ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں قبضہ اصل میں قبضہ کہتے ہیں ہاتھ کی یہ ہتھیلی کو یہ جو اندر کی حصہ ہوتا ہے نا پام جس کو بولتے ہیں یہ قبضہ ہے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں تالوت جالوت کے واقعے میں قف قبضہ تن تو اسی سے پھر قبض ہے جب ہم کسی کو پکڑتے ہیں تو عموماً اسی جگہ سے پکڑتے ہیں تو قبض کر لیا جائے گا علم مراد جائے کہ علم اٹھ جائے گا وَيَسْخَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ اور ظاہر ہو جائے گی جہالت اور فتنے وَيَكْسُرُ الْحَرْجُ اور حرج کثرت سے ہوگا حرج قیلا کہا گیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول وَمَا الْحَرْجُ حرج کیا ہے قالا فرمایا هَكَذَا بِيَدِهِ فَخَرَّفَهَا کَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلُ آپ نے اپنے دستے مبارک سے یعنی ہا قضا مراد اس طرح بھی یدی ہی اپنے ہاتھ سے فخر کا ایسے جیسے آپ کرتے نا گردن پہ ہاتھ رکھ کے فخر رفہا گویا کہ ترچھا کر کے اپنے ہاتھ کو ایسے دکھایا کہ گردنیں کاٹ دی جائیں گی کَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ گویا کہ آپ ارادہ کر رہے تھے یہ کہنے کا کہ قتل ہے تو گویا کہ اس میں حدیث میں مضمون تو کچھ اور ہے لیکن حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ کے اشارے سے بھی کوئی بات کہی جا سکتی ہے باڈی لینگویج استعمال کی جا سکتی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے بعض لوگ جب بات کرتے ہیں خاص طور پہ علم کے لیے بیٹھتے ہیں کسی جگہ تو پورے ہاتھ بھی ہلتے ہیں گردن ہلتی ہے آنکھوں کو گول گول مٹکانے کا انداز یہ سب کچھ درست نہیں ہوتا کبھی کبھی اٹھے تو اور بات ہے کیونکہ کچھ لوگ ہیں وہ جب ہاتھ بہت کھلاتے ہیں نا تو پھر سننے والا انہیں ایکشنز میں ڈسٹریکٹ رہتا ہے اور دوسرے اس کی بات سے زیادہ پھر اس کے جسم کے اشاروں پہ نظر آنے لگتی ہے پھر اگلی حدیث ہے ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اب یہاں لفظ انہما نئے لوگوں کے لیے پوچھ رہی ہوں انہما کیوں آئے دونوں پہ کس میں اسماء پہ بھی اور ابو بکر پہ بھی تو وہ صحابی یا صحابیہ جن کے ماں یا باپ بھی مسلم ہوں تو ان کے نام کے ساتھ پھر انہا کی جگہ انہما تو انہما میں حضرت اسماء بھی ہیں اور ابو بکر بھی ہیں یا پھر ان کی بیوی جو یعنی اسماء کی ماں تھی بہرحال قالت کہتی ہیں اتئی تو میں آئی عائشہ رضی اللہ عنہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہی یار وہ تو سلی پڑھ رہی تھی نماز یعنی میں اس حالت میں حضرت عائشہ کے پاس آئی کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی فقلتو تو میں نے کہا ما شان الناسی کیا حال ہے لوگوں کا یعنی لوگوں کا کیا حال ہے یعنی وہ پریشان کیوں ہیں فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ تو انہوں نے اشارہ کیا آسمان کی طرف بس انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا مراد کیا تھا کہ سورج کو دیکھو وہاں گرہن لگا ہوا ہے فَإِذَا النَّاسُ بس اتنے میں الناس لوگ قیامن کھڑے تھے فَقَالَتْ تو میں نے کہا سبحان اللہ یعنی پاکی ہے قُلْتُ میں نے کہا آیتن نشانی فَأَشَارَتْ بِرَاسِهَا تو انہوں نے اپنے سر کے اشارے سے اشارہ کیا ای نام مراد کیا تھا کہ ہاں ایسا ہی ہے فقمتو پھر میں کھڑی ہو گئی حتی یہاں تک کہ تجلان الغشو یہاں تک کہ مجھ پر غشی تاری ہونے لگی تجلانی تاری ہونے لگی الغشو غشی فجعلتو تو پس میں نے کیا 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 یعنی فجعلتو اصب ولا راسل ما تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا فحمد اللہ عز و جل تعریف کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وانسا علیہ اور ثنا بیان کی ثم قال پھر کہا اب یہاں سے دیکھیے گا حدیث کے لفظ ہیں ابھی جتنی بات ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورج کو گرہن لگا ہوا تھا لوگ پریشان تھے हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हाथ के इशारे से बताया कि ये ग्रहण क्या कोई अजाब या क़यामत की अलामत है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, यानी जब भी सूरज को ग्रहण लगे तो समझें कि ये भी कुर्ब क़यामत की अलामत है। उसके बाद कहती हैं कि मैं भी नमाज में खड़ी हो गई और गशी तारे होने लगी तो सर पे पानी डाला, तो उसके बाद अल्लाह के नबी ने अल्लाह की हमदो सना की और फिर बोले, मा मिन शैयिन लम अकुन उरीतुहु इल्ला रईतुहु फी मकामी हाजा। जो चीज़ें भी मुझको दिखाई ना गई थी उनको मैंने अपनी जगह से देख लिया है, हत्ता के हत्तल जन्नत वन्नार, जन्नत और जहन्नुम भी। अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे आज वो चीज़ें दिखा दी गई जो कि मुझे पहले नहीं पता थी, हत्ता के जन्नत और जहन्नुम भी देख ली मैंने। फऊहिया इलैया, फिर वही की गई मेरी तरफ, क्या अन्नकुम बेशक तुम, तुफ्तनून फी कुबूरिकुम, तुम आजमाए जाते हो, तुम फितनों में डाले जाते हो अपनी कब्रों में, यानी कब्र के अजाब की तरफ इशारा है। मिसला माने दिसके, औ या करीबा इसके करीब, यानी रावी कहते हैं कि मुझे याद नहीं है कि करीब करीब फितने से आजमाए जाओगे, लफ्ज़ याद नहीं है कि हज़रत असमा ने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। और फिर उसके बाद फरमाया, ला अदरी मैं नहीं जानता, अय्या ज़ालिका कौन सी ये बात थी, कालत असमाओ जो असमा ने कही, मिन फितनतिल मसीही दज्जाल, मसीह दज्जाल के फितने में से, युकालू तो कहा गया, मा इल्मु का बिहाजर रजुलु, क्या है इल्म तेरा उस शख्स के बारे में। अब ये कब्र के सवाल है, कब्र में कैसे आजमाइश होती है, मुर्दे को बिठाया जाता है, फिर उससे पूछा जाता है, मा इल्मु का बिहाजर रजुल, क्या है तेरा ख्याल इस शख्स के बारे में, यानी तुझे इस शख्स मुराद जहाँ शख्स से लिख लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तू इनके बारे में क्या जानता था। कब्र में बाज़ रिवायत में यहाँ तक आता है कि अल्लाह के नबी की तस्वीर दिखाई जाती है, लेकिन हमें इसमें कुछ नहीं पता कि हमने तो अल्लाह के नबी की तस्वीर भी नहीं देखी, लेकिन बहरहाल किसी भी तरह से आपका जिक्र किया जाता है। फअम्मल मोमिनो, फिर अगर वो मोमिन हो, अविल मोकिनो या यकीन रखने वाला, वो क्या कहता है, ये उसके अल्फाज हैं, लादरी बिअयिहिमा कालत अस्मा, ईमान रखने वाला या यकीन रखने वाला, यानी रावी कहता है कि मुझे याद नहीं कि हजरत अस्मा ने इसमें से क्या कहा था, लेकिन वो मुर्दा क्या कहता है, फयाकुलू तो वो कहता है, हुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद हैं अल्लाह के रसूल, जा अना बिल बय्यिनाति वल हुदा, वो आए हमारे पास रोशन दलीलों और हिदायत के साथ, फअजब ना हो तो हमने कबूल किया उसको या जवाब दिया हमने उसका, वत्तबा ना हो और हमने उसकी पैरवी की, हुवा मोहम्मदुन ये मोहम्मद है, सलासन तीन बार वो ऐसा ही कहेगा, फयुकालू तो कहा जाएगा, नम सालेहन सो जा, नम क्या है, सो जा फेल है अमर हुक्म, नौम कहते हैं नींद को, लाता खुजू सीना तुम वाला नाम पढ़ा हमने, सालेहन यानी अच्छी सी नींद सो जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं तंग करेगा, बहुत काम कर लिए, बहुत कुछ तुमसे हो गया, और हकीकत ये है कि हमने अब ये बात जान ली, क्या कद अलिमना बेशक हमने जान लिया, इन कुंता कि बेशक था तू, लमोकिनन भी अलबत्ता यकीन रखने वाला इस पर, व मल मुनाफिकु यानी यहाँ तक तो मोमिन का मामला था, इसके बरक्स जो मुनाफिक है, अविल मुरताब या शक वाला, क्या कहता है, अभी उसके अल्फाज हैं, कब्र में फितने में पड़ गया और इसमें कामयाब नहीं हुआ, लादरी मैं नहीं जानता, अय्या जालिका कालत अस्माओ मैं नहीं जानता ये कौन है, कहा अस्मा ने, यानी अब फिर रावी को जरा शक है कि हजरत अस्मा ने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए थे, फयाकुलू तो वो शख्स कहता, ला अदरी मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, समेत उन्नासा मैंने लोगों से कुछ सुना था, यकुलू न शैयन कहते थे वो कोई बात, फकुलतुहू तो मैंने भी उसको कह दिया, अल्लाह अकबर, सुना सुनाया ही मानता, लोगों के मुंह से जो बात सुनता था उसको दोहरा दिया करता था। तो आप देखिए कि इस हदीस से हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं, नंबर एक अजाब कब्र, फिर फरिश्तों का सवाल करना साबित हुआ, फिर जो शख्स अल्लाह के नबी की रिसालत पे शक करता है, अब चाहे वो आज नाम का मुसलमान ही क्यों ना हो तो वो वहाँ इन सवालों का जवाब नहीं दे सकेगा। आज भी ऐसा शख्स इस्लाम के दायरे से खारिज है। और यहाँ से एक और बात भी पता चलती है कि हज़रत अस्मा गशी की हालत में भी नमाज पढ़ रही थी, तो गशी की हालत में वजू नहीं टूटता, और वजू के मसाइल तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में आ ही रहे हैं। तो हमारे लिए इसमें से इल्म की जो बात है वो क्या है, इशारे, यानी आप देख रहे हैं कि इसमें बात करने के दौरान कुछ इशारों का जिक्र है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से हम सब दुआ करते हैं कि हमें कब्र के अजाब से बचाए और फिक्र लगाए। कितने लोगों को कब्र के अजाब से डर लगता है। खौफ आता है। बस आप देखिए कि हम अपने जिंदगी में ऐसे साथियों को जानते हैं जो बहुत ही डरते हैं ना, लिफ्ट में नहीं बैठते, तंग जगह से खौफ आता है, लेकिन फिर हमारे सामने वो मरते हैं और हम उनको कब्रों में डाल आते हैं। पता नहीं उस वक्त उनको अंदर क्या होता होगा, लेकिन वो हमें बता नहीं सकते ना। तो कब्र का खौफ डर ये फितरी है, करें क्या। जो चीज़ मैंने पर्सनली फील की है, जितना आपका कुरान पाक से ताल्लुक बढ़ता जाएगा ना, उतना आपके खौफ में वो फोबिया जो है ना वो खत्म हो जाएगा, बल्कि एंजॉय करेंगे। जैसे आपको तो महफिलें बहुत अच्छी लगती हैं ना, तो जो दुनिया में पड़ा है ना उसको हर वक्त महफिलें, पार्टियां, दावतें, खाने। जो अल्लाह की तरफ आता है, दीन की तरफ ज्यादा जुड़ता है, तो आप देखें दुनिया में भी उसको तन्हाई अच्छी लगती है ना, फिर उसका दिल घबराता है। वो कहते हैं ना कि दुनिया की महफिलों से उकता गया हूं या रब, फिर उसको अच्छा नहीं लगता कि हर वक्त ही लोग हंस रहे हैं, कह के ठट्टे लगा रहे हैं, तो उसको दुनिया में भी फिर तन्हाई अच्छी लगती है, तो उसको कब्र की तन्हाई से फिर खौफ नहीं आता। और सबसे बढ़कर ये कि अगर कुरान को अपनी तन्हाइयों का साथी बना लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर कब्र में भी कुरान हमें कंपनी देगा और हमारी तन्हाई को बांटेगा। कोई बात आपके जहन में क्वेश्चन तो नहीं? जी
जी, अगर किसी की तरफ से पहले कब्र का खौफ और फिर चला जाए, उसका क्या मतलब होता है?
उसका अमल देखा जाएगा कि अमल में क्या चेंज आई है।
ये अच्छी बात है, खौफ को ज्यादा ये
यही पूछ रही है ना, अगर तो अमल बढ़ता जा रहा है तो खौफ कम हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अमल कमजोर है और अब है, तो फिर ये बुरी बात है कि नहीं, डर हो गया, बेखौफ हो गया, ढीठ हो गया। जी आप
मुसा जी, ये जो सूरज को ग्रहण लगा और उन्होंने नमक की, तो क्या आज भी ग्रहण लगे तो
बिल्कुल,
उसमें से कुछ
जी
नुकसान होता है?
बिल्कुल, इससे सलातुल कुसूफ का भी पता चलता है कि जब सूरज को ग्रहण लगे तो सलातुल कुसूफ, और जब चांद को ग्रहण लगे तो सलातुल खुसूफ। खसफ का लफ्ज होता है, इधर कसफ का है। ठीक है, अगली रिवायत पे चलते हैं। बाप है, अर्रहलत फी मसलति नाजिलती व तालीमी अहली ही। अर्रहला, रहला कहते हैं इल्म के लिए सफर करना, रहला सफर करना, फिल मसलती मसला पेश जो आ जाए उसको मालूम करने के लिए, अन नाजिलती जो पेश आ जाए, यानी वो मसला जो दरपेश हो गया उसका जवाब लेने के लिए सफर करना, वह तालीम अहली ही और अपने घर वालों को तालीम देना। अन उकबत इब्न हारिस रदियल्लाहु अन्हु, हजरत उकबा बिन आमिर रजील तन्हु से रिवायत है, क्या कहते हैं कि अन्नहु तजव्वज अबनता ली अबी एहाब इब्न अजीज, कहते हैं कि मैंने निकाह किया अबू एहाब बिन अजीज की बेटी से। फअतत हुई इमरातुन, फिर एक औरत आई, फकालत फिर कहने लगी, इन्नी बेशक मैंने अरदात उकबता वल्लती तजव्वज बिहा, मैंने दूध पिलाया है तुझको भी और इस औरत को भी जिससे यानी तेरा निकाह हो गया। फकाल लहा उकबतु, उसकी ये बात सुनकर उकबा ने कहा, मा आलम इन्नकी अरदातिनी, मैं तो नहीं जानता कि तूने मुझे दूध पिलाया। अब आप कहेंगे उनको क्यों नहीं पता था, ये ऐसे ही कि जैसे आज के दौर में बच्चे डे केयर्स में जाते हैं ना, तो बहुत सारी डे केयरर्स जो होती हैं वो उनको डील करती हैं। अरब लोग अपने बच्चों को खुली जगह पे छोड़ देते थे। अब मिसाल है कि हलीमा सादिया का नाम आता, अल्लाह के नबी उनके पास थे, हो सकता है किसी वक्त अल्लाह के नबी रोए, मैं मिसाल दे रही हूँ, एक बच्चा रोया तो उसकी दोस्त ने भी पिला दिया, अब वो जिक्र करना माँ बाप से भूल गई। ये ऐसा मामला होता था कि बच्चे को दूध आम था पिलाना, अरब लोग तो आज भी देखिए जब भी किसी का बच्चा रोता है तो उसको दूध पिलाना चाहती हैं, ये एक कल्चर था। तो इस औरत ने आके कहा कि मैंने तो तुम्हें भी पिलाया तो इसको भी पिलाया, इनको ये बात पता नहीं थी। वला अखबर तनी फरकी वेलर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं मुझे तो इसकी खबर ना थी, पहले तुमने मुझे इसका क्यों नहीं बताया। चुनाचे ये सवार हुए और अल्लाह के नबी के पास पहुंचे, बिल मदीना थी मदीना में, फसअलहू, फिर सवाल किया उनसे, फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह के नबी ने क्या कहा, कैफा वकद कीला, कहा तू कैसे, कैफा यानी इस्तियारा है, कैसे ताल्लुक करेगा, सोहबत कैसे करेगा उस औरत से, वकद कीला कि जबकि ये बात कह दी गई है, यानी अब एक औरत जिसके बारे में ये पता चल गया ये तेरी रजाई बहन है, तो अब तू उसको बीवी कैसे बना सकता है, लिहाजा फफारकहा उकबतु, तो फारक छोड़ दिया, तफरुक आ गया यानी जुदाई करा दी गई उसकी उकबा से, व नकहत ज़ौजन गैरहू, और किसी दूसरे मर्द से उस औरत का निकाह करा दिया गया। सुभान अल्लाह, अब देखिए ये कितना एक सेंटिमेंटल इशू है, बल्कि इस हदीस में तो इतना है, अलग से एक और हदीस है वो इनकी है या किसी और की है, तो उसमें आता है कि इनका बच्चा भी था। तो यहाँ से बहुत सारे इश्यूज समझ आते हैं। पहली बात है कि जहाँ शुबा आ जाए फिर उसको छोड़ दो, दा मा यूरीबिक इला मा ला यूरीबिक, जिस चीज में शक शुबा आ जाए उसको छोड़ दो, और जिस चीज़ को शक से पाक पाओ उसको ले लो। फिर दूसरी बात पता चलती है कि अगर कोई ऐसा इश्यू बन जाए दीन के नाम पर, तो फिर शौहर बीवी को जुदा किया जाएगा। हमारे यहाँ अमूमन दुनियावी मसाइल, मिजाज का फर्क और खानदानी झगड़ों की वजह से तो घर टूटते हैं। दीन का जहाँ फर्क आता है तो फिक्र करते हैं ये कैसे होगा, ये तो बच्चों वाले। मिसाल देती हूँ कि नमाजी और बेनमाजी, अब ये एक बिग इश्यू है। इस्लाम कहता है नमाजी मुसलमान है, बेनमाजी मुसलमान नहीं है। निकाह होगा नहीं, हो गया, मर्द नमाजें पहले पढ़ता था, निकाह हो गया, अब छोड़ता क्या है, बल्कि वो इनकार करता है कि नमाज पढ़नी नहीं चाहिए। तो अच्छे तरीके से बात करके उसको मोहलत दे के जैसे दी गई मक्का वालों को, फिर नहीं मानता तो अलग कर दो। आज हम ये नहीं करते, हम कहते हैं नहीं घर टूट जाएगा, बातें होंगी, खानदान टूटेगा। और उस वक्त हमें वो हदीस भी याद आती है कि तलाक तो हलाल चीजों में हराम है। तो असल पता क्या है कि एक होती है आइडियल सोसाइटी, एक होती है हमारी ऐसी मैन मेड सोसाइटी। आज भी जब इस्लाम का कानून दुनिया में आएगा, आप देखिएगा शादी करना भी आसान हो जाएगा और शादी छोड़ना भी आसान हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स आते ही तब है जब इस्लाम पे अमल किया जाए। मिसाल देती हूँ कि आप देखिए कि इन्होंने बीवी को छोड़ा, उसी हदीस में आप पढ़े व नकहत जौजन गैरहू, उस औरत को पता था कि यह अल्लाह का हुक्म आ गया और इस मर्द से मेरी शादी टूट रही है, कोई बात नहीं, इधर से टूट रही है, इद्दत पूरी होगी, मुझे एक और मर्द मिलेगा। अब उसको भी दूसरे को भी पता था कि इनका कोई झगड़ा नहीं था, ये अल्लाह के एक हुक्म से जुदा हुए, तो किसी दूसरे अच्छे मर्द ने उनको खुशी से ऑफर दे दी होगी। ये है इस्लाम। आज हमें पता है एक शादी टूट गई, अब दूसरी मिलनी का, शादी छोड़े मंगनी टूट जाए तो माँ बाप को गम लग जाता है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जब ये सारे मामला आते हैं तो फिर हम बाज दफा इतनी पसो पेश करते हैं कि अल्लाह की पनाह, बाज लोगों को तो मैंने देखा है सारी जिंदगी हराम की जिंदगी बसर करते हैं। जानी शराबी मर्द मिल जाते हैं, अल्लाह ताला माफ करे, शुरू में रिश्ता भी नहीं देख के किया होता, लेकिन सिर्फ इसलिए औरतें सारी जिंदगी वहां बैठी रहती हैं कि रोटी कहाँ से खाएंगे, छोड़ दिया तो बच्चों का क्या होगा, खानदान क्या कहेगा। गलत बात है, ये इस्लाम का मिजाज नहीं। इसीलिए आज हम परेशान हैं, जरूरत इस बात की कि हम अपने आप को चेक करें, हम अपने आप को देखें कि हमारा इस्लाम कौन सा है, और फिर उसके बाद आसान कीजिए। इस पे एक मेरा और आपका अमल ये हो सकता है कि कभी खानदान में अपने आप को अगर हम देखें कि कोई भी ऐसी चीज जो खिलाफ शरा हो रही है तो उस पे चुप नहीं रहना चाहिए, और अगर किसी ने शरीयत को लागू करते हुए कोई ऐसा काम लिया तो कुरेद नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ बातों के डर से भी ऐसे काम नहीं करते कि फिर किस किस को हम जवाब देंगे, और अल्लाह ताला हम सबको ऐसी चीजों से बचा के रखे। फिर अगला बाब बड़ा खूबसूरत है, बाब क्या है, अत्तनावुबु फिल इल्मी। तनावुब कहते हैं बारी मुकर्रर करने को, नौब अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है टर्न के लिए, जैसे कहते हैं ना आपकी टर्न मेरी टर्न। थोड़ा सा इसको समझिए कि जब अल्लाह के नबी मक्का से मदीना में आए, भाईचारा कायम कर दिया गया था, और इसके बावजूद मुहाजरीन ने घर में बैठना पसंद नहीं किया कि चूंकि अब अंसार ने हमें मोहलत दे दी है तो अब हम हाथ पांव तोड़ के बैठें और ये मेहनत करें, बल्कि वो क्या करते थे, अपने भाई जो एक अंसारी और मुहाजिर का आपस में रिश्ता था, एक अल्लाह के नबी के पास जाता इल्म हासिल करता तो दूसरा मेहनत करता, और इसी तरह स्विच करते। इसी का तज़किरा है कि बारी भी मुकर्रर की जा सकती है। इसका ये नहीं मतलब कि अब आप सारे स्टूडेंट बारियां लगा लें कि एक दिन मैं आती हूँ तो दूसरी मुझे बता देगी, दूसरी आएगी तो मैं बता दूँ, कोई ये समझ रहा है तो फिर मैं इस बाब को स्किप कर दूँ। बहरहाल आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। अन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाला, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, कुंतु था अना मैं व जारुन और मेरा हमसाया, यानी जारुल्ली मेरा हमसाया, मिनल अंसारी जो अंसारी था, फी बनी उमैया तबनी जैदिन, बनु उमैया बिन जैद, यानी वो कह रहे हैं कि मेरा एक अंसारी पड़ोसी था जो बनु उमैया बिन जैद के गांव में से था, वही और वो था मिन अवालिल मदीनती, मदीना के इर्द गिर्द के गांव से, अवाली कहते हैं औल से, दरमियान यानी इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, ऊपर का जगह, यानी बाज दफा पहाड़ी इलाकों में कुछ गांव ऊपर होते हैं, नीचे कुछ मैदानी इलाकों में होते हैं। तो कहते हैं कि एक मेरा हमसाया था जो मदीना की बुलंदी की तरफ था, यानी थोड़ा दूर था, वकुन्ना और हम दोनों थे, न तवाबू बारी मुकर्रर कर लेते थे, अन नजूला जाने की, नाजिल होने की, अला रसूलिल्लाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, यनजिलु यौमन एक दिन वो आता, व अनजिलु यौमन और एक दिन मैं आता, व इजा नजल तो फिर जिस दिन मैं आता, जीत हूँ भी खबर इजा लिकल यौम तो मैं खबर देता उस दिन की उसको, यानी आज सब कुछ क्या हुआ था कहाँ से, मिनल वही वही में से, वगैरह ही और उसके अलावा, यानी उस दिन नबी सल्लम के पास जो भी वही आई और कुछ ऐसी चीजें जो हुई वो कौन सी थी उनको मैं बता देता, और वह इजा नजला और जब वो आता, फाला मिसला जालिका वो भी ऐसे ही करता, समझ आ रही है ना, जो मैं करता था यानी जो मैं सुनाता था बातें वो भी मुझे सुना देता था। फिर क्या होता, फनजल साहिबिल अंसारी यौमन नौबितिही, एक दिन क्या हुआ, आ गया मेरा अंसारी साथी अपनी बारी के दिन, यानी मेरा दोस्त अंसारी जब वापस आया तो क्या किया, फदरबा बाबी, तो उसने दस्तक दी मेरे दरवाजे पे, दरबन शदीदन, जोर से दस्तक देना, जैसे कुछ लोग घंटी पे हाथ ही रख लेते हैं ना, यानी जोर से खटखटाने लगा। फकाला, तो कहने लगा, अजम्मा हुआ, क्या वो यहाँ है, यानी मुराद था कि ये साहबी अमर। फफजे तू, तो मैं डर गया, घबरा गया, फुजी आता है ना कुरान में लफ्ज, वही है, अचानक कोई चीज हो जानी, घबरा जाना, मैं घबरा गया। फखरज तू इलैही, तो मैं उसके पास निकला, बाहर निकला। फकाला, तो वो बोला, हादसा अमरुन अजीमुन, आज तो एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, खबर दे रहे हैं ना। काला, ये कहते हैं, अच्छा इसने ये भी नहीं बताया कि क्या हुआ है, लेकिन असल में ये वाकया था अल्लाह के नबी के अपनी बीवियों से ईला करने का, उसी की तरफ इशारा है। तो ये कहते, मैंने नहीं पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन घबरा के ये बात सुन के काला कहते हैं, फदखल तो ला खफसता, मैं गया हफ्सा के पास, हजरत उमर की बेटी थी, बेटी के पास गए। फाइजा ही तब की, तो देखा कि वो तो रो रही है। फकुल तू, तो मैंने कहा, अतल्लक कुन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तल्लाक दे दी तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कालत, कहने लगी, ला अदरी, मैं नहीं जानती। सुम्मा फिर, दखल तू अल नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दाखिल हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फकुल तू, तो मैंने कहा, वह अना कायमुन, और मैं खड़ा था, यानी खड़े खड़े मैंने पूछा, अतल्लक्ता निसा का, क्या आपने तल्लाक दे दी अपनी बीवियों को, क्योंकि हजरत उमर की बेटी भी तो थी ना आपके घर पे। काला, तो आपने फरमाया, ला नहीं। फकुल तू, तो फिर मैंने कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी खुशी से, यानी एक बाप के लिए ये खबर खुशी की नहीं होती कि बेटी को तलाक मिल जाए, और खास तौर पे नबी की जौजियत से निकल कर वापिस आना, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात हो सकती थी। तो गोया के बात जो थी वो मालूम हुई। पता क्या चला कि अगर हमसायों को तकलीफ ना हो तो छत पर बालाखाने बनाने में कोई हर्ज नहीं। और दूसरी बात है कि हजरत उमर ने एक अच्छे बाप होने का सबूत दिया कि उन्होंने अपनी बेटी को फिर नसीहत की कि अपने शौहर की खिदमत करो, इताअत करो। और अच्छे बाप जो होते हैं वो कभी भी ये नहीं कहते बेटियों को छोटी छोटी बात पे घर को अपने को ख़त्म करो। तो बहरहाल मौजू ये था कि बात जो है वो इस तरह से भी की जा सकती है, बारी हासिल की जाती है इल्म के लिए, उसी का जिक्र था। फिर उसके बाद अगला क्या है, बाब अल गदब फिल मौइज़ती व तालीम इज़ारा मा यकरहू, वाज या तालीम के वक्त किसी नापसंदीदा बात पर इजहार नाराजगी करना। अब ये उस्ताद का एक राइट है जो अल्लाह ताला के नबी की हदीस से पता चलता है कि कोई किसी को वाज दे रहा है या तालीम दे रहा है, अब उसको कोई बात बुरी लगती है, मसलन किसी के फोन की बेल बज गई, लोगों ने बीच में जगह छोड़ दी, लेट आए, टेक लगाई, कोई भी चीज सोच लीजिए जो स्टूडेंट से होती है, तो क्या उस्ताद ये हक रखता है कि उस पर नाराज हो। आइए इसको देखते हैं। अनबी मसूद अल अंसारी रदी अल्लाह अन्हु काल, अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, कहने लगे, काला रजुलुन, कहा एक शख्स ने, या रसूल अल्लाही, ए अल्लाह के रसूल, ला अकादु उद्रिकु सलात मिम्मा युतव्विलु बिना फलानन, मेरे लिए नमाज बाजमात पढ़ना मुश्किल हो गया क्योंकि फलां शख्स बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं। आपको इमाम साहब होंगे जो सूरह बकरा शुरू कर देते होंगे, तो इन्होंने गोया के शिकवा किया मैनेजमेंट का या इमाम का कि वो इतनी लंबी नमाज पढ़ाते हैं कि मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा, हम लंबी से क्या समझते हैं, वो कुल वल्ला की बजाय वो सूरत अम्मा या तसालुन पढ़ देते हैं, हालांकि उस दौर में लंबी नमाज उसको कहते थे जो कम अज कम आधे पौने पारे पे चली जाए या उससे भी ज्यादा। तो कहा कि मुझे मुश्किल लगता है। खैर, इसके बाद कहते हैं कि ये बात कह दी, फमा रही तो नबीया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मौइज़तिन अशद्द गदबम मिन यौम इज़िन, साहबी कहते हैं कि मैंने उस दिन से ज्यादा अल्लाह के नबी को नसीहत करते वक्त कभी गुस्से में नहीं देखा जितना उस दिन गुस्से में थे। यानी आपने मिंबर से जाया, खबर आ गई ना कि किसी ने ज्यादती किया या ज्यादा ही तकवा दिखाया, तो फिर कहते हैं कि आपने फरमाया, ये आपके अल्फाज हैं, फ़क़ाल अय्युहन्नास, कहे लोगो, इन्नकुम, बेशक तुम, मुनफ़िरूना, नफरत दिलाने वाले हो। मुनफ़िर कौन होता है, जो नफरत दिलाए। फमन सल्ल बिन नासी, पर जो कोई नमाज पढ़े लोगों के बीच में, फल युखफिफ, तो वो छोटी नमाज पढ़े, तखफीफ कर दे। फ इन नफी हिम, क्योंकि बेशक उनमें अल मरीदा, बीमार लोग भी होते हैं, व दईफा, कमजोर बूढ़े भी होते हैं, व जल हाजती, और जरूरत वाले, कोई कारोबारी है, रात जाते नमाज पढ़ने आ गया, किसी ने बच्चों को लेने जाना है, तो इज्तमाई नमाज में ज्यादा तवालत पसंदीदा नहीं है। कितना खूबसूरत दीन है हमारा। हम कहते हैं वो ज्यादा नेक है जो ज्यादा लोगों को मुश्किल डालता है। अब आप अपनी नमाज लंबी कर लें तो ब्रेक लंबी हो जाए, आप सुन्नतें लंबी कर रहे हैं तो फर्ज छूट जाए। तो यहां से सीखिए कि हिकमत क्या है। मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह के नबी की ये बातें सुनकर वाकई आप एक ह्यूमन लगते हैं। हमने तो अल्लाह के नबी के बारे में अमूमन एक बड़ा सेंट और एक बहुत पीर और बुजुर्ग किस्म का एक तसव्वुर सोचा होता है, तो गोया के दूसरों का लिहाज करना चाहिए। दूसरी बात इससे ये भी पता चलती है कि कभी कोई ऐसी बात जिससे पब्लिक को मुश्किल आए उस पर गुस्सा किया जा सकता है अपने किसी शख्स की, यानी कोई भी दीन का काम ही करने जाए लेकिन लोगों को मुश्किल फतवा दे आए या गलत बात कह दे तो उस पर फिर एक्शन लेना चाहिए। अगली रिवायत है अन ज़ैद इब्न ख़ालिद अल जुहन्नी रदी अल्लाहु अन्हु। हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद अल जुहन्नी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या अन्न नबी या सालहु रजुलुन अनिल लुत्क़ता। अल्लाह के नबी से गिरी हुई चीज़, यानी लुत्क़ता कहते हैं गिरी पड़ी चीज़, ऐसे ही आपको रात जाते कोई बाली मिल गई, कोई प्लेट मिल गई, कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई वाली वारस ना हो, तो पूछा गया कि अगर कोई गिरी पड़ी चीज़ अगर किसी आदमी को मिल जाए तो क्या किया जाए उसका। फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने फरमाया, ओरिफ विकाअहा, बांध के रख दो उसको, यानी ओरिफ कहते हैं पहचान लो, विकाअहा उसके बंधन को। विका जो होता है ना, इसी से लफ्ज़ तकिया भी है। विका मुराद है कि जैसे वो एक डोरी सी नहीं होती कि इसके बंधन, या फिर आगे फरमाया वकाला वियाहा यानी बंधन या बर्तन, व इफासहा या उस थैली को पहचान लो। यानी अमूमन जो चीज़ गिरती है वो किसी की या तो पैसों वाली थैली होती है या फिर कोई बंधन होता है, कोई जैसे बेल्ट गिर गई किसी की, कोई रस्सी चली गई ऊँट को बांधने की, या फिर कोई वो बर्तन हो सकता है जो हाथ से खाते हुए गिर गया। का उसको पहचान के रख लो। कब तक? सुम्मा अरिफ सनतन, फिर पहचान रखो उसको 1 साल तक। सुम्मा फिर इस तमे बिहा, फिर करो इसका ऐलान। फाइन जा रब्बुहा, अगर आ जाए उसका मालिक, फअद्दहा इलैही, तो अदा कर दो, लौटा दो उसको। काला कहा, फदालतुल इबिल, फिर कहा कि अच्छा अगर इसके दौरान उसका जो इबिल है यानी किसी का ऊंट गुम गया, अब क्या करें। बर्तन तो हम रख सकते हैं, बाकी चीजें तो रख सकते हैं, वो तो दे दी जब मालिक आएगा, लेकिन अगर पा लिया जाए किसी के ऊंट को, फगदीबा, ये सुनकर आप गुस्से में आ गए। हत्ता यहां तक के अहमर्रत, सुर्ख हो गया, वज नताहू, आपके रुखसार, यानी आपको ये बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि आपके रुखसार सुर्ख होने लगे या आपका चेहरा सुर्ख। तो रावी कहता है कि मुझे नहीं पता कि या तो आपका चेहरा सुर्ख हो गया था या आपके चेहरे पर यानी कुछ इस किस्म की चीज थी कि जिसको देखा जाए। तो आपने पूछा, तरीदल मा व तर शजरता फजरहा हत्ता यलकाहा रब्बुहा, यानी ऐसे सवाल क्यों पूछते हो, किसी का ऊंट है तो ना पकड़ो, तुझे उस ऊंट से क्या गरज है, उसकी मश्क और इसका मोजा उसके साथ है, जब पानी पर पहुंचेगा पानी पी लेगा, दरख्त से चरेगा, इसे छोड़ दे यहां तक कि इसका मालिक इसको पा ले। समझ आइए अमल की बात। बेजान चीज है जिसका डर है कि आपको किसी की पड़ी है गुम जाएगी आपके हाथ में लग गई उसको उठा ले, लेकिन जानवर किसी की ऐसी चीज जो कि खुद चल सकती है सर्वाइव कर सकती है उसको वहीं छोड़ दें, आप ले जाएं पीछे से मालिक वहां ढूंढने आ जाए। यही हुक्म ऊंट का है और यही हुक्म पे काल फदालतुल गनम, अच्छा अगर गुमशुदा बकरी मिल जाए, काल लका औली अखी का औली जीबू का, सुनिएगा अब इसमें, कहा कि अच्छा किसी की बकरी मिल जाए तो क्या उसको भी ना ले, कहा नहीं, या तो वो तुम्हारी है यानी तुम ले जाओगे, या तुम्हारे उस भाई के यानी असल मालिक आके ले जाएगा, तो या फिर उसको भेड़िया खा जाएगा। क्या पता चला कि ऊंट को तो कोई नुकसान नहीं, उसको छोड़ दो, लेकिन वो चीज जो दूसरे की जाया होने का डर हो तो उसको पकड़ लेना चाहिए। देखिए कितने अल्लाह के नबी हकीम इंसान थे ना, ये बातें आम इंसानों के जहन में उस तरह तो आ भी नहीं सकती जैसे कि आपकी जुबान मुबारक से समझ आती हैं। तो गोया कि ये पता चल गया कि किसी की ऐसी चीज जिसके बिगड़ने का, खराब होने का या फिर चोरी होने का डर हो उसको उठा लेना चाहिए। 1 साल तक क्यों रोकने की बात है? अरबों में होता ये था कि लोग 1 साल के बाद हज के लिए जब आते थे तो मुख्तलिफ कबीलों से आते थे, और हो सकता है कि चांस भी ज्यादा हो तभी चीजों के गुम होने का। आम दिनों में तो लोकल्स ही थे ना, तो लोकल की किसी की कोई चीज गुमी तो वो अमूमन पता ही होता था किधर है कौन, वो आके ढूंढ लेगा। तो यहां से हमारे लिए भी अमल की बात है कि किसी की चीजें रखी रखें। अच्छा अब हम क्या करें जो हमारे यहाँ स्कूल में चीजें छोड़ जाएं लोग, लॉस्ट एंड फाउंड, पूरा साल संभालते रहे, यहाँ तो एक हफ्ते के बाद कोई नहीं उठाता, और जमा करते जाएं तो मेरा ख्याल है कि एक छोटी सी दुकान तैयार हो जाए लोगों की गिरी पड़ी चीज़ों की। हमें इसमें अपने अमल के लिए क्या करना चाहिए कि पहले आप जाने से पहले ज़रा देखें। अमूमन देखिए, मैंने सिस्टर्स को देखा है जिस चीज़ की तैयारी कर रही होती हैं जल्दी में वही भूल जाती हैं, हत्ता कि किसी का पता चला कि वो कहीं निकल गई, रात फोन आए, रहे हम तो अपना बच्चा ही वहाँ भूल आए हैं। अब ये भी हो सकता है। तो करना क्या चाहिए, होश से काम को ऐसे करें, वक्त से पहले तैयार हो, और जो चीज़ें लेके जाने की ना उसको दरवाजे के पास रख लें, रिमाइंडर्स भी होते हैं और वक्त पे वो भूलती नहीं है। चलिए आखिरी रिवायत देखते हैं। अन अबी मूसा रजी अल्लाह अन्हो काल, अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, काला सुइलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अशिया करीहा, एक बार सवाल किया गया अल्लाह के नबी से उन चीज़ों के बारे में जो आपको पसंद नहीं आए, यानी ऐसे ऊट पटांग किस्म के सवाल पूछ लिए गए। फलम्मा उकसिरा के जो आप गया, सुम काला फिर सलूनी अम्मा शी तुम पूछ लो फिर आज मुझसे जो तुम चाह। जुलून तो एक शख्स ने कहा, अकाला आपने फरमाया, अबू का खुजाफतुन तो खुजाफा है, फकाम आखरा हो गया, फकाला तो मन अभी या रसूल आप अल्लाह के रसूल, फकाला तो आपने मौला शईबता का तेरा बाप शईबा का गुलाम, उमरा उमरा पता था, यानी अल्लाह के नबी के असरात देखे, साहबा नहीं समझ रहे लेकिन उमर समझ गए। काला तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह ए अल्लाह के रसूल, इन्ना नतूबु इला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, हाँ की जनाब में आपसे, यानी हम अल्लाह जनाब में तौबा करते हैं, मुराद ये कि अब हम आपसे ऐसी बातें नहीं पूछेंगे, ऐसे सवालात नहीं पूछेंगे। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि इन आदमियों ने बाप का नाम क्यों पूछा, ये कोई ना मालूम होने वाली बात है। तो यहाँ से समझ लीजिए कि उस दौर में नसब इतना बिगड़ा हुआ था कि जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसके हकीकी बाप का पता नहीं चलता था। तो इस तरह भरी महफिल में बाप के बारे में पूछना अपनी माँ को रुसवा करने के बराबर था। इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइंड किया कि तुम दबा दिया तो मेरे और आपकी अपने ऊपर लेते रखेंगे के का कोई पर्दा जो अल्लाह ने छुपा ली को नहीं जाहिर किया। कि आज की हदीस अब आप इस पूरे सेशन से क्या सीखा,
अपने बहन भाइयों को और अपने बच्चों को,
यानी अपने करीबियों को इल्म की रग़बत दिलानी चाहिए। अगर किसी पोस्टमैन की कोई चीज आ जाती है और बच्चे उसको खोल भी लेते हैं बट इट डजंट बिलोंग जी, ठीक है, ये कहते हैं कि अगर आपकी पोस्ट में कोई लेटर आ गया, कोई चीज आ गई जो आपका नहीं है और आपके बच्चों ने खोल दिया, तो वी कैन नॉट रिटर्न इट बिकॉज नो रिटर्न एड्रेस, वट कैन वी डू। फिर खोल के देखिए, अगर खोल लिया आपके घर आके उसमें क्या लिखा हुआ है, अंदर जो लिखे वाले का कोई पता आता है तो उसको दे दीजिए, नहीं तो अगले दिन उसको बंद करके पोस्टमैन को दे दें कि वो जो मर्जी चाहे, क्योंकि अगर वो कोई अहम चीज़ है, कोई डॉक्यूमेंट है तो यकीनन वो पोस्ट ऑफिस से रब्ता करेंगे। हमें पैसे मिले तो पुलिस जी दे दीजिए पुलिस को, वो खुश हो, गवर्नमेंट को जाएंगे ना फिर, वो जाहिर है कि एक इज्तमाही चीज़ होगी। चलिए ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर, सुभानकअल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।